सभी ने आज बाबा की मुरली सुनी सवेरे, याद है? आज बाबा ने मुख्य तीन बातें बताई। एक, बाबा ने कहा हर एक बच्चों को बाबा से वर्षा लेना ही चाहिए और मिलेगा भी। लेकिन थोड़ा सोचो कि जो इतने हम बैठे सब भी बाबा के बच्चे हैं, तो सभी को बाबा का वर्षा पूरा मिलेगा? तो वर्षा किस आधार से मिलता है, कितना मिलता है? बाबा ने कहा हर एक को अधिकार है, चाहे छोटे हो कोई भी, हर एक बच्चे को पूरा अधिकार है बाबा से वर्षा लेना। फिर बाबा ने आज सारे मुरली के अंदर कहा ज्ञान और भक्ति। भक्ति से क्या होता है, ज्ञान क्या करता है, ये दो बातें बताया। तीसरी एक बात बाबा ने आज बताया, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, देवताओं से भी श्रेष्ठ है, बाप बच्चों की पालना करता है। तो आप सोचो कि बाबा हर एक बच्चों की पालना करना चाहिए? अगर जिसी के माँ बाप ऐसे है, भगवान है, उनके हर संकल्प सफल, हर कदम सफल, तो ये सोच के बताना कि बाबा क्या सबकी सेवा करता, मदद करता है, हर एक को करना चाहिए? तो ब्राह्मणों के जीवन में कोई समस्या का नाम निशान नहीं होना चाहिए, तो ये भी सोचने लायक बात है ना? सिर्फ सुनेंगे नहीं, तो क्यों, किसकी करता है, कैसे करता है, कहां तक रहा है? एक और, एक कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। बाबा ने कहा बहुत जन्मों से किए हुए कर्म है, वो बार बार सामने आते हैं, तो क्या करो, बुद्धि वहां बार बार अटकती है, जाती है, बुद्धि वहां से हटाओ। तो बुद्धि को कैसे हटाएंगे, जो हमने कर्म किया आएगा ना, याद तो होंगी, बार बार आता है, और उसमें भी जो बुरे कर्म के वो बार बार आता है। सफेद कपड़े पहनते हो, थोड़ा सा बारीक काला दाग लगे तुरंत दिखाई देता है। काले कपड़े पहनो रंगीन, कितना भी दाग लगे दिखाई नहीं देता है, इसलिए बाबा ने सफेद कपड़े पहनाया। थोड़ा सा भी दाग लगे, जैसे जितना हम ज्ञान से बुद्धि को दिव्य करते हैं, स्वच्छ करते हैं, थोड़ा भी गलत विचार आता है तुरंत पता चल जाता है। तो बाबा ने कहा उससे बुद्धि को हटाओ और मेरे तरफ लगाओ। तो वो हटाना चाहिए, कैसे, अपने आप तो नहीं हटेगा ना, तो विधि चाहिए। ठीक है, आज जीवन में ये समस्या है, न चाहते व्यर्थ विकल्प कहां से आते, कैसे आता, नहीं कहीं मार्केट तो नहीं है, बाहर से आता है, ऊपर से आता है। तो आत्मा ने इतने जन्मों से किए हुए कर्म अंदर भरे हुए है, तो पहले स्वप्नों में बताता है, जब रात को सोते ये बाहर के आंखें बंद हो गए, अंदर जो भरा हुआ है वो पहले स्वप्नों में आता है, तो सबे उठते ही उसका चिंतन चलता है, फिर वर्णन होता है। सब कुछ होते हुए भी जो खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, संतुष्टता चाहिए, वो नहीं रहती, सब कुछ है स्थूल रूप से, क्यों, अंदर काटा है, अंदर दर्द है, तो वर्णन भी करते हैं, बार बार उसका चिंतन चलता है। तो बाबा कहते हैं उससे बुद्धि को हटाओ। तो कैसे हटाएंगे, अपने आप तो नहीं होगा ना, तो उसकी एक विधि चाहिए। एक विधि चाहिए कि बुद्धि अगर खाली है सारा दिन में, तो जरूर स्मृति, पुराने किए हुए कर्म स्मृति है, वो बार बार आती है, तब स्मृति स्वरूप का जो रोज ज्ञान सुनते हो, उस ज्ञान का अंदर धारणा, धारणा मीन्स बुद्धि को याद है, धारणा अपने आप नहीं होती है, बुद्धि को याद रहती है, हम धारणा करके छोड़ देते हैं, तो बुद्धि को याद भी तब रहती है। सिर्फ सुनने से आज कलयुग दुनिया में संगमवर किसी को भी याद नहीं रहती है। आप देखो प्रैक्टिकल, आज सवेरे से आपने सवेरे मुरली सुनी, किसी ने किसी को भी वर्णन नहीं किया, बाकी सब बात किया, मुरली के पॉइंट नहीं सुनाया किसी को। तो ये ज्ञान दान वही दे सकता है जिसके बुद्धि में, जिस स्मृति में है, तो वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्मों में भी आएगा। तो स्मृति किसके प्रकार के, हमारे देह के संबंध के प्रति, कारोबार के प्रति, हिसाब किताब के प्रति, कर्मों के, पुराने संस्कार के प्रभाव में है ज्ञान सुनने के बाद। इसलिए सुनना सब कुछ नहीं है, पढ़ना भी नहीं, बहुत भी नहीं चाहिए, एक बूंद कोई भी, अगर बुद्धि में याद है, वो अपने आप याद रहेगा नहीं, उसकी भी विधि है। तो वो नोट करते हो, अपने आप को बार बार पढ़ाते हो, औरों को वर्णन करते हो, तो बुद्धि के अंदर जागृत रहता है। सवेरे दिन में शाम तक स्मृति जागृत है। जब स्मृति है तो अंदर कर्म करते खाते पीते चलते अंदर ही चिंतन चलता है, वृत्ति कहते हैं उसको, अंदर ही चलता रहता है। फिर कभी कोई मिला, बोलते हुए कर्म करते हुए आचरण में बोली में आता है, आज बाबा ने ऐसे कहा, इसलिए आज बाबा ने कहा कोई आपको मिले क्या सुनाएगा, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, उसने ऐसे किया, पर चिंतन, किसी की निंदा वही करेगा बताएंगे ना, किसी ने दुख दिया, किसी ने और कुछ कहा, कोई शुभ समाचार किसी को नहीं सुनाएगा। और किसी को मिलो एक दूसरों की ग्लानी, वो ऐसा वही सुनाएंगे, कोई ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छे का वर्णन नहीं होता है। आप भी देख लो, बाबा ने आज कहा जब आप सुख में रहते हो तो बाबा को कोई भी याद नहीं करता है, दुख है तब सुनाने के लिए कोई चाहिए। अगर आपको सुख मिला, किसी ने बहुत सुख दिया, कोई भी वर्णन नहीं करता है। दुख दिया, किसी ने गलत बात, गलत व्यवहार किया, वो जरूर वर्णन होगा। तो क्या करना चाहिए, तो वो करता है उसमें और आप इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, और क्या हुआ, ध्यान देते हो। किसी की निंदा सुनना हमारे अंदर आदत हो गई है बहुत जन्मों से, क्योंकि पर चिंतन पर दर्शन चला ना, रामायण महाभारत सब क्या है, औरों का है। तो ये ज्ञान स्व का है, स्वयं को परिवर्तन के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए। तो वो भक्ति, इसलिए बाबा ने कहा अगर कोई कुछ सुनाता है इधर उधर की, वो अच्छा लगता है। क्यों, बुद्धि में ज्ञान नहीं है, ये निशानी है, स्मृति नहीं है। अगर है तुरंत आप उसमें ध्यान नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो बीच में ही उसको कहेंगे आज बाबा ने ऐसे भी कहा था। हरेक का अपना हिसाब किताब है, उनका अपना कर्म है, उसकी अपनी धारणा है, उसका अपना जीवन का लक्ष्य है, सभी एक जैसे तो नहीं होगा ना। ऐसे करके आप अपने आप को छुड़ाएंगे। अगर आप हां हां में हां मिलाते जाएंगे और भी बढ़ेगा, उसका भी खराब, आपके भी कान खराब, और जो अंदर गया उसका चिंतन, जब भी आप इनको देखेंगे हां ये वो है, वो स्मृति आएंगी, क्योंकि वृत्ति के अंदर है, अंदर स्मृति में है, देखते याद है वो ये व्यक्ति है। दृष्टि वृत्ति हमारी बोल आचरण सब चेंज हो जाता है, कारण सुनी बातों का प्रभाव। इसलिए बाबा ने कहा अगर ज्ञान बुद्धि के अंदर है, कितनी भी पुराने संस्कारों में आता है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत भरा हुआ है, स्वप्न बताता आपको आप कौन सी आत्मा हो, किस प्रकार के आत्मा हूं मैं, प्रजा क्वालिटी की हूं, रॉयल हूं या राजा क्वालिटी की हूं, सतो प्रधान तमो प्रधान रजो, किस प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं। हर एक के अपने अपने हैं और कोई जानता नहीं है, वो हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानता, मैं कौन सी आत्मा हूं। तब दादी जानकी भी कहती बार बार, मैं कौन, सिर्फ मैं आत्मा इतना नहीं है, मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। कोई आपकी महिमा कर सकते हैं तो आप जानते हो मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैंने मेरे अंदर ये कर्म भरा हुआ है, ये संस्कार भरे हुए हैं, आपको अपने आप रियलाइज कराएगा। और जब तक महसूस नहीं किया तब तक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बाबा ने आज दोनों में डिफरेंस बताया, भक्ति में महसूस होता नहीं, गलत करने के बाद भी अभी भी कभी भी मैंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे बोला, हाँ उन्होंने गलत किया, आपने क्या किया। महसूसता की शक्ति बुद्धि के अंदर है, तो बुद्धि का ज्ञान ही नहीं है। तब बाबा ने कहा आके मैं तीसरा नेत्र देता हूं, दिव्य बुद्धि देता हूं। गीता में भी अर्जुन को कहा है, अर्जुन जिसको बुद्धि नहीं है, सुख और दुख, सत्य और असत्य, ये क्या चीज है समझ में नहीं आता है। तब बाबा ने आके पहले दिव्य बुद्धि, बुद्धि का ज्ञान दिया। दुनिया में आज मन का ज्ञान है, मन लगाओ, मन मना भव कहा शास्त्रों में भी, मन एकाग्र करो, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा ने कहा बुद्धि योग, दिल से मुझे याद करो। बुद्धि के अंदर समझ है, समझ से कर्म करो, सुनी सुनी बात नहीं। इन्होंने कहा योग लगाओ, लगा रहे हो आप, क्यों लगा रहे हो, इन्होंने किसी ने कहा इसको नमस्ते करो, आप कर रहे हो। भावना भक्ति समझ नहीं है, किसी ने कुछ कहा करो, उसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, हम बहुतों को ने बहुत कुछ कहेंगे, समझ कर करो। वो ज्ञानी तो आत्मा समझता है इसका मेरे जीवन में फायदा क्या है, इससे मेरी प्राप्ति क्या है। जैसे हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए, भगवान से प्यार करने आए? नहीं, वो भक्ति में किया। बाबा ने कहा 100% बच्चों का प्यार है, स्नेह है, वो भक्ति में अनंत किया, पूजा किया, व्रत किया, जप का जो क्या नहीं किया। अब भी संगम पर बच्चे एक ही है, पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए आए, और कोई काम नहीं है, सब कुछ कर चुके हो। जो करने के बाद ही उनको ये ज्ञान मिला है, जिसके अंदर अभी भी कोई भक्ति थोड़ी है तो यहां नहीं पहुंचे, यहां बैठ नहीं सकते हो। तो ज्ञान भक्ति का फल है, ज्ञान ज्ञान फल है, ज्ञान के अंदर समझ है मुझे अब क्या करना चाहिए, समय कौन सा है। संगम युग का तब बाबा ने कहा देवताओं से भी ऊंच जीवन है ये, क्योंकि ईश्वरीय परिवार है, सारे कल्प में देवताएं सब मिलेंगे, वो आपके पाप नहीं मिटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे सब कुछ होगा, सोना हीरा सब होगा, लेकिन कि और भी कर्म करते जाएंगे, भरता जाएगा। सारे कल्प के अंदर एक ऐसा समय है ये, जो अंदर किया हुआ है उसको आप मिटा सकते हो। अगर वो नहीं मिटाया तब का हु बहु 5000 साल तक ऐसे ही रहेगा। तो वो सही कौन सा समय है ये, समय को जानना। जैसे बरसात का समय आया तब खेती में बीज बोना है, अगर नहीं बोया आपने, बहुत कारण है, बीमार थे और कुछ था और कुछ था, किसको बताएंगे, अपने तकदीर को ही। तब बाबा ने आज एक शब्द बोला तदबीर। तदबीर का अर्थ क्या है, तकदीर एक है और तस्वीर नहीं बनती है, तकदीर बना सकते हो। तो तदबीर क्या है, डॉक्टर साहब बताएगा। हाँ, कर्म है ना, भगवान तकदीर कैसे बना, अपने आप तकदीर नहीं बनता है, भगवान तकदीर बनाता है कैसे, मेरा तकदीर वो बनाने की युक्ति कैसे बना चाहिए, तन भगवान की सेवा में लगाओ, मन कहाँ लग रहा है, धन कहाँ लग रहा है, समय श्वास कहाँ लग रहा है, किसकी सेवा में लगा रहे हो, किसके श्रीमत के अनुसार लगा रहे हो, वो देगा ना। तो विधि बताता है। तब कहा कि आज बाबा ने वर्षा सबको लेना चाहिए, अधिकार है, मिलेगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीन है, सबको मिलेगा, तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर इस शरीर को कभी भी कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए तो क्या करना चाहिए, कभी सारे कल्प में गरीब नहीं होना चाहिए, सदा साहूकार रहे तो क्या करना चाहिए, तीनों करे, तीनों तीनों ही बस, तो कितना करना चाहिए फिर, तो कितना करना चाहिए, वो टाइम वो आप बताओ, कम से कम कितना करना चाहिए, हाँ वो बताओ, आप बताओ कितना करेंगे तो कितना मिलेगा। आप कहेंगे मैंने 1 घंटा किया, 10 घंटा किया, 8 घंटा किया, तो बस हाँ वो बताओ आप बताओ कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलो आपने कहा एक विधि बताता हूँ, बाबा ने एक विधि बताया, बच्चे शरीर को सारे कल्प में कोई भी बीमारी नहीं हो, निरोगी काया वरदान बाबा ने देता है, बाबा विधि बताता है, भाग्य विधाता है। इस शरीर को सारे कल्प में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो बाबा ने कहा बच्चे इस रुद्र यज्ञ की 1 मिनट सेवा करो, 1 का पदम गुना, 1 जन्मों के लिए शरीर को कोई बीमारी नहीं होगी। तो कितने जन्मों के लिए बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो आपके हाथ में तकदीर, बताओ कितने जन्म के लिए, पक्का 21 जन्म के लिए नहीं हाँ नहीं तो 21 जन्म के कहते हैं, 22वें जन्म में बीमारी हुए तो चलेगा नहीं, 84 जन्म। तो कितना करना, भगवान चतुर सुजान है, भोलानाथ नहीं है, तो कितना एक दिन में 24 घंटे आपके पास है, तो कितना आप सेवा में लगा रहे हो, ये तन किसकी सेवा में लग रहा है, आप औरों की किसकी सेवा करो और भगवान मेरा बीमारी ठीक करो। जो करेंगे वो मिलेगा ना, वॉट यू सॉ सो शैल यू रीप, जो बीज बोएंगे वही मिलेगा। तो आप पूछो तब बाबा ने कर्मों की गति, बाबा के बच्चे हैं तो भी देखो, एक सेंटर में एक बहन है सवेरे से रात तक कितनी सेवा करती है, माताजी भी है, इनको भी दो ही हाथ दिया है, चार हाथ तो नहीं दिया, उनको भी भगवान ने चार हाथ नहीं दिया, दो ही दिया है। तो एक देवी बन गई, एक साधारण माता बन गई, बहन जी बन गई, क्यों? उतने इतने लोगों की सेवा किया है ना, अपना जीवन संपूर्ण समर्पित किया। श्वासोश्वास कहते हैं, हर संकल्प हर कर्म सवेरे से रात तक, कितने लोगों के लिए ब्रह्मा भोजन बनाती, योग लगाती, भोग लगाती, क्लास कराती है, ज्ञान सुना, सवेरे से रात तक। देवी क्यों बन गई? अपने आप नहीं बनी। तो कर्म भगवान भी नहीं बनाता है, विधि बताता है, करता है। खेती में एक बीज बोलो तो 50 सौ दाना आज भी देता, ये विधि है, ये कर्म है, ये तदबीर करने की विधि बताता है। भाग्य कैसा बनाए, बिना किए हुए भगवान अपने आप कुछ नहीं देगा किसी को, लेकिन हम बिना किए हुए कुछ चाहते हैं। बाबा आप दृष्टि दे दो, आप सिर पर हाथ रखो, आप कुछ करो, तो वो करने के लिए भाग्य बनाने के लिए आया है। अगर बाबा ही करे तो ऐसे हाथ घुमाओ तो सब देवता बन जाएंगे, तो कोई गरीब प्रजा रहेगा ही नहीं, है ना। तो विधान है ये, तो बच्चों को करना, तब कहा तदबीर और तकदीर, भाग्य बनाने की विधि बताता है। बच्चे तन किसकी सामे लग रहा है, 24 घंटे आपके पास है, मन कहां जा रहा है, धन कहां जा रहा है। देखो एक बाबा, अभी आज बाबा ने कहा बाबा पालना करता है, अभी मैंने सुना एक जगह पर कि बाबा कैसे बच्चों पर ध्यान देता है, किस पर ध्यान देता है, जो निमित्त टीचर है, जिसने पूरा जीवन बाबा को दिया है। जैसे घर में, परिवार में पति पत्नी, पति का पूरा ध्यान देता है घर पर, कमाते समय घर के पर पूरा ध्यान देता है, ऐसे शिव बाबा भी बच्चों पर कैसे ध्यान देता है। लेकिन आपके जो हिसाब किताब है वो आपको भोगना पड़ेगा। सेवा में हर प्रकार से मदद करता है। तो देखा एक बहन जी कह रही थी कि उनको गवर्नमेंट में उन्होंने किसी के लिए जमीन के लिए पैसे भरे थे, कितने साल हो गए, देते नहीं, कल देंगे, बाद में देंगे, ये एप्लीकेशन करो, देते नहीं थे। लेकिन उनको अभी जमीन दूसरी लेने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो अमृत वेले बाबा के कमरे में बैठी, बाबा के योग लगाते हुए कागज पर लिख रही थी, बाबा ये व्यक्ति गवर्नमेंट वाले पैसे नहीं देते हैं, कितने समय हो गया, बिना पैसे हम दूसरा जमीन कैसे ले, क्या करे, आप कुछ उपाय बताओ। लेटर लिख के बाबा के सामने रखा। सवेरे 4 बजे, 9 बजे फोन आया, बहन जी आप तुरंत आके पैसे ले जाओ। तो भगवान सुनता है, कैसी पालना करता है सेवा के लिए। लेकिन बाबा को करो, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, बच्चे तुम्हारे हिसाब किताब, तुमको मिटाना है। ब्रह्मा बाबा को भी कहा, मैंने आपका तन लिया है, भाड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारी खांसी तुम्हारी बीमारी तुमको मिटाना है, अपने पुरुषार्थ, वो नहीं हिसाब किताब के अंदर हाथ नहीं लगाता है। कर्मों की गति आपकी, सेवा के अंदर। और एक कहा कि एक मिनिस्टर ने कहा कि जमीन देता हूं, तो लेके गए ऐसे जगह पर, तो लेके गए जमीन देंगे, कल चलना है कहा, और सवेरे उनको 4 बजे अमृत वेले योग में उठने से पहले एक दृश्य दिखाई दिया, 2-3 बंदूकधारी कार से उतर रहे गाड़ी से और जमीन दिखाई रहे ऐसी जगह पर जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतना ही दिखाई दिया बस। उसके बाद दिन में तो मिनिस्टर ने बुलाया, बहन जी आप चलो, तो उनके पास मिनिस्टर के पास बंदूक वाले होते हैं, तो उतार करके वो जमीन दिखाने ले जा रहे थे, सवेरे मुझे बाबा ने दिखाया, सेम ऐसे ही 2-2 गाड़ी से बंदूकधारी उतरे और वो भाई लेके जा रहा हमको, तो याद आया, तो देखा ऐसी जगह पर जमीन। बहन जी को समझ में आया, बाबा ने इशारा दिया कि बहन जी ने उनको टोली खिलाया, भाई जी आपकी जमीन हमको नहीं चाहिए, हम वापस जाते हैं। तो बाबा हर बच्चों को क्या लेना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये अब भी लेटेस्ट एक बहन ने अपने अनुभव सुनाया कि आज बाबा ने कहा बाप बच्चों की पालना करता है सेवा के अंदर, सेवा के आइडिया देगा सेवा के अंदर, क्यों भगवान की सेवा। शिव बाबा बच्चों के द्वारा इस सारे विश्व की सेवा करता है, क्योंकि स्वयं को तन नहीं आए, जिसने पूरा तन दिया तो सेंटर में टीचर रहती है, जो भी फुल सेवा समर्पित है उनको बाबा कैसी रक्षा करते। लेकिन पर्सनल हिसाब किताब आपके कर्मों का भोग वो आपको अपनी तपस्या से मिटाना है। आप कहेंगे बाबा वो भी आप ही मिटाओ, चलेगा करेगा नहीं, वो आपके कर्म है, उसके लिए विधि बताता है। बच्चे योग करो, ज्ञान सुनो, ऐसी सेवा तन मन धन से सेवा करो, अपने आप नहीं, कैसी मदद करता है, कहां करता है। तो यहां भी सभी को अधिकार है बाबा से लेने के लिए, अपने आप ऐसे नहीं देगा, योग्य पात्र को देखेगा। तब बाबा ने आज कहा बच्चों को योग्य करके ले जाता हूं, ऐसे उठा के नहीं ले जाता हूं। तो योग्य बनाता है कैसे, तब का मनसा सेवा करो, मन में सदा जो ज्ञान सुना बाबा ने वो याद रहना चाहिए, स्मृति में, चिंतन वर्णन में, औरों के प्रति शुभ सोचो, कि हरेक का अपना अपना पार्ट है, जानते हो, हरेक अपना ही काम करेगा ना, आपके अनुसार तो नहीं चलेगा। तो ये समझ करके चलना। दूसरा, तन 24 घंटे आपके पास है, कहां जा रहा है, क्या सेवा कर रहे हो। दो प्रकार, एक स्थूल है, एक सूक्ष्म, एक रूहानी सेवा है और एक जिस्मानी है। अभी मजदूर भी काम करते हैं ना, उनको भी पैसे देते हैं, तो रूहानी सेवा की वैल्यू, सारे क्लब ने सब कुछ किया, रूहानी सेवा चाहिए। तो रूहानी सेवा कैसे करेंगे बताओ, एक एग्जांपल। रूहानी सेवा, जिस्मानी सेवा, दोनों में अंतर बताओ, मनसा कैसे कहेंगे। सेवा मीन्स औरों की करेंगे ना, स्वयं की भी औरों की, औरों की मनसा सेवा कैसे करेंगे। अगर किसी को पानी दिया शरीर को दिया, दवाई दिया शरीर को दिया, अगर किसी को ज्ञान सुनाते हो वो शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए, रूहानी सेवा। और ज्ञान देने वाला अविनाशी है, ज्ञान अविनाशी है, सुनाते किसको, अविनाशी आत्मा को, फल अविनाशी है। तब कहा बाबा ने ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, ज्ञान सीधा नहीं जाएगा, संस्कार लेके जाएंगे। तो ज्ञान दान करो, तब कितना सहज तरीका करता है, रोज जो मुरली सुनते हो अच्छे पॉइंट्स याद रखो, अपने आप को पढ़ाओ स्व सेवा, और चलते फिरते कर्मों के संबंध संपर्क में आते हो, हमारे मुख से आज क्यों ब्राह्मण तब का, ब्राह्मण के मुख से ज्ञान ही निकलता है। हाँ 100% नहीं, 5%, 10%, 1% कम से कम, एक व्यक्ति को भी हमारे मुख से ज्ञान दान। किसको दे रहे, शरीर के लिए, शरीर को लो खाना दिया, खाया पिया खत्म, शाम को फिर भूख लगेंगी। आत्मा को अविनाशी, आत्मा अविनाशी है, अविनाशी आत्मा को दे रहे, अविनाशी ज्ञान आए। तो रूहानी सेवा और जिस्मानी सेवा में पता होना चाहिए। जिस्मानी सेवा दुनिया में भी करते हैं, कितने गरीबों को दान करते हैं, दवाई देते हैं, कितने एनजीओस है, कितने गरीबों, कुछ होता है अभी देख लो वहां श्रीलंका में कुछ हुआ, कितने लोग मदद करेंगे, लेकिन बाबा के बच्चे क्या करेंगे। हाँ है ना, तो योगदान कैसे करेंगे आप, प्रकाश दे दो कहा, कैसे देंगे, एमर्ज करके, किसको एमर्ज करेंगे, कितने लोग इधर, कितने लोग उसमें, तो थोड़े से लोग है, तो फरिश्ता से बनेंगे। फरिश्ता उसको कहते हैं जो कहता है आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी जिसके अंदर 5 विकारों के सपने नहीं आए, उसका नाम फरिश्ता। ऐसे नहीं कोई फरिश्ता बनता है ना, फरिश्ता वो कम से उसके अंदर ऐसे संस्कार भरे हुए हैं। तो मैं आपको एक हीरा देता हूं लेकिन हाथ काले है तो हीरा क्या होगा, तो फरिश्ता वो, तो कैसे देंगे। तो बाबा ने व्यवस्था दिया है कि कैसे योगदान, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझ के बाप को याद करो। तो बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ते हो, चिंतन करते हो, प्रकाश अपने आप फैलता है। हाँ डायरेक्शन दे दो एक, हाँ इस जगह पर, व्यक्ति को नहीं एमर्ज किया आपने, शरीर एमर्ज किया, शरीर को शक्ति काम नहीं करेंगी। अभी आप यहां से नंबर डायल करते हो अमेरिका में, उसको किसी को एमर्ज करते हो, किसी व्यक्ति को, वाइब्रेशन अपने आप जाते हैं। तो यहां वाइब्रेशन से हवा, फैन चल रहा है, हवा कहां लग रही है दिखाओ, फैन चल रहा है। तो हमारे पास मन और बुद्धि दो है, ये दोनों अगर परम धाम तक स्थिर होते हो, पावर हाउस है विचार हमारे, शक्ति बाबा की, जहां पहुंचाना है वो शक्ति इस विचार को वहां पहुंचाएंगी। विचार हमारा, हमको औरों को, हमारे भाई बहनों को मदद करना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है आज, हमारे संकल्प वहां तक नहीं पहुंचते हैं। तब बाबा ने कहा बच्चे मेरे से, मैं बच्चों को मदद करने आया हूं। यूज मी, मेरी मदद ले लो। ठीक है, आपके पास वो ताकत नहीं है, सारे कल्प में कमजोर आत्मा हो गई, शक्तिहीन हो गई, ये तो भगवान की जरूरत नहीं है। सच्चित में हमारे पास है, कोई भगवान को याद नहीं करता है। तब बाबा ने कहा मैं आया हूं बच्चों को मदद करने के लिए, जो मेरे साथ संबंध जोड़ता है। कैसे जोड़ो वो भी विधि बताया, मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, अशरीरी बनो, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। शरीर के भान में रहो तो मन बुद्धि जाएंगे ऊपर, देहधारी याद आएगा, पाव दर्द कर रहा है, प्यास लगी है, उसने ऐसे कहा था, ये सब विचार आएंगे, क्योंकि देह की स्मृति है। तब कहा विदेही बनो, अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, आत्म अभिमान है, दो तीन पांच नाम है। तो पहले आत्मिक स्मृति चाहिए, इसलिए एक ही शब्द बताते हैं सारी दुनिया में भी, एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस, अपनी स्मृति को जागृत करो, कम से कम जब बैठते हो सवेरे शाम अपने को जागृत करो, मैं कौन, मेरा रूप कैसा है। आत्मचिंतन, जिसे प्लेन जगह उड़ता है, एकदम नहीं उड़ता है, रनवे चाहिए। तो यहां भी ऊपर जाना चाहते हो, पहले अच्छे विचार करो, आत्मचिंतन, पॉजिटिव थॉट करेंगे, आत्मा पॉजिटिव लाइट, तो अपने आप ऊपर जाती है। अगर चिंतन देह देहधारी का चल रहा है, ऊपर नहीं जाते हो, तब कहते व्यर्थ विकल्प इधर उधर के याद आती आएंगी। व्यवस्था दिया, एक ही शब्द बोला, आत्मा समझ मुझे याद करो। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमार एक ही राजयोग, क्या एक ही शब्द बाबा ने बताया, बच्चे अपने को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। अगर आत्म अभिमानी नहीं बने, आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हुए, इतने रनवे चाहिए तो उसको, तब ऊपर उड़ता है। इतना 5-10 मिनट अगर आपने मन बुद्धि में अच्छे विचार किया, आत्मचिंतन किया, शरीर का चिंतन नहीं आया 5-10 मिनट आत्मिक स्मृति में, तो शरीर का भान गया, आत्मा लाइट हो गई, अपने आप वो चुंबक है, अपने आप खींचता है। तो उसके साथ फिर बात करते रहो, शिव बाबा कौन, बाबा 8 शक्ति है बाबा, सर्वशक्तिवान, हमारा बाप से मांगो नहीं, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। बाबा मुझे आप, बाबा ने कहा मेरे जैसे बनो, मांगो नहीं कहा, तब मेरे साथ जाएंगे, बाप समान बनो तो बाप के साथ जाएंगे, नहीं तो बारात में जाना पड़ेगा। तो बाप समान कैसे बनेंगे, वो कौन और मैं कौन, कंपेयर करो, उससे बात करते रहो, तो उसके साथ जोड़ते, जब बात करते हो तो आपके अंदर विचार चलता है, चिंतन चलता है, ये वाइब्रेशन, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो सर्वशक्तिवान से जोड़ने के कारण सर्वशक्ति मास्टर, सर्वशक्तिवान पावरफुल वाइब्रेशन सकाश कहते हैं, आपके विचार पावरफुल हो गए, क्यों, पावर लग गया। अगर पावर से नहीं जोड़े तो आपके विचार चलते हैं तो पावरफुल नहीं हो गया, विचार तो कर रहे हो आप, शक्ति नहीं है। तो शक्ति देते हो तो जहां दुनिया में जरूरत है, जहां देखो भारत में अभी गर्मी होगी है ना, तो क्या करता है बादल, हवा आती, बादल अपने आप खींच के ले आता है, तूफान आता है, बादल जहां है वो खींच के लाता है, कोई ऐसा अपने आप कोई भेजता नहीं है। ऐसे आप भी जैसे बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते हो, जहां जरूरत है वहां आपके वाइब्रेशन, उसको बाबा ने कहा लाइट हाउस बनो। लाइट हाउस कभी सोचता नहीं इसको शक्ति देना चाहिए, जिसको चाहिए अपने आप मिलती है। लाइट अगर कहीं जलता है जिसको चाहिए वही उधर जाएगा ना। हमें एक दिन ऐसे करता बॉम्बे में, शाम को ऐसे वॉकिंग करते, बहन जी कहने लगे शाम को वॉकिंग करने चलो, हमने कहा हजारों से लोग है जा रहे रस्ते पर, एक समुद्र के किनारे पर, एक भी हमको पहचानता नहीं, एक भी बाबा के ज्ञान में, दोनों हम बहन जी सेंटर के टीचर, इतना सोचते ही एक आर्मी की कमांडो थी, ब्लैक कपड़े पहनते पूरा, तो बहन थी वो कोई मिनिस्टर आने वाला था तो उसके सिक्योरिटी के लिए आई थी, तो एकदम सामने आके खड़े हुए। उसके पहले एक विचार आया था कि हमने कहा कोई नहीं, तो बाबा ने क्या विचार दिया, देखो बच्चे लाइट इतने चलते हैं, किसी को वो लाइट, कोई लाइट के नजदीक जाता है नहीं, अगर जिसको कुछ पढ़ना है जरूरत है तो खंबे के नीचे जाता है, पढ़ना है तो जरूरत है लेता है, बच्चो लाइट तुम फेंकते जाओ, जिसको चाहे वो आएगा। सामने आके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ने लगे, भाई जी मैं पुणे में ज्ञान सुनती हूँ, तो मैं सोचते आ रहे थे अभी कि कल बाबा ने ऐसे कहा, इसका अर्थ क्या है? तुरंत आप दिखाई दिया कि भाई जी इसका अर्थ बताओ। फिर हमने कहा आप कल सवेरे आना, नहीं मुझे यहाँ ड्यूटी है कल 2 बजे तक, एक मिनिस्टर आने वाला है। तो हमने कहा समय मिला तो आना, नहीं मैं आ नहीं सकती 2 बजे तक। हमने कहा ठीक है हम कल सवेरे जाने वाले हैं। देखा वो सवेरे सवेरे 7 बजे पहुंच गई, शाम को 4 बजे तक सेंटर में रही। प्यास लगनी चाहिए, है ना, जिसको वेयर देयर इज ए विल देयर इज वे, इच्छा अगर है सब कुछ बाजू में कर देते हैं हम, कारण नहीं बताते, कारण लगता है, इच्छा चाहिए। तो अगर यहां भी हमारे जीवन के अंदर लक्ष्य है कि मुझे सारे विश्व के आत्मा को शांति की शक्ति देना है ना, तो सवेरे बैठते हो तो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ और शिव बाबा से ये कनेक्शन जोड़ते हो, बाबा आपके बच्चे जहां भी आए बाबा को पता है, दिखाई देता है। जैसे आपको कहा बाबा को कैसे, बाबा के हर बच्चों के ऊपर नजर है, ऊपर से क्या करता है स्पष्ट दिखाई देता है। देखो जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा तब बताता था जगदीश संदेश में, अरे ऊपर से इतना मधुबन इतना नजदीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं, शरीर है तो लिमिट है, आत्मा के अंदर लिमिट नहीं है, देख इतनी दूरांदेशी है। तो बाबा भी सूक्ष्म मतलब इतना स्पष्ट देख सकता है हर एक व्यक्ति को, कहां क्या करना चाहिए, कौन क्या करता है, लेकिन किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है, हर एक को स्वतंत्रता है, जैसा जो करेगा वैसा वो पाएगा, जनरल डायरेक्शन देगा, व्यक्तिगत इंटरफेयर नहीं करता है। उसको कहते किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है। अगर महाभारत सुना हो, देखो इंद्र सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बुलाया, श्री कृष्ण आए द्रौपदी को मदद किया, लेकिन दुशासन को रोका नहीं, गलत कर्म करने वाले को रोका नहीं, नहीं रोकना चाहता। अगर भगवान नहीं रोकता तो और कौन रोकेगा? सोचना है, कहानी सुनने की नहीं, आज अपने जीवन में लगाओ, हम कहते इनको पहले ठीक करो, ये शांत होना चाहिए, नहीं यही समय ये ज्ञान है। तो सिर्फ हम कहानी शास्त्र पढ़ते हैं, अपने आज जीवन में ले, अभी की कहानी है, ये कलयुग में ऐसे नहीं, उधर पांडव और कौरव के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, ये आज पांडव और कौरव है, जब भगवान होता है, जो कर्म जो अभी करते भगवान के साथ वो यादगार है, वो शास्त्रों में लिखा रहता है। तो भगवान आप कहेंगे बाबा है इधर, उन्होंने भी श्रीलंका में ऐसे कहा, वो चर्च में गए थे, भगवान कहां है, प्रेयर करने गए थे, ऐसे नहीं गए थे, वैसे मार्केट में नहीं है, तो भगवान कहां है? तो गलत कर्म करने वालों को भी, तुम्हारे कर्म कहीं भी जाओ तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है, उसमें भगवान कुछ नहीं करे। हां वहां जाकर के भी विधि पूर्वक अगर याद करते हो, यहां बैठ के भी भगवान आपको याद सुनता है, आपको मदद करेगा, डायरेक्शन देगा। लेकिन आप औरों के लिए कहो, हरेक को अधिकार है, अच्छा करो गलत करो, तभी कहा कर्मों की गुई गति है। तब बाबा ने आज का कोई इधर उधर की बातें सुन, हां सुना चाहिए, हां उनके अपने कर्म है, उनका अपना जीवन का लक्ष्य है, सभी एक हाथ एक जैसे नहीं हो सकता है, हरेक को स्वतंत्रता है। आप भी उनके सुनकर के ऐसे करते हो, कान खराब करते हो, वो समझते हैं किचड़े का डब्बा बहुत अच्छा है, इसके अंदर डाल दो, है ना, तो डब्बे को देखना चाहिए ना, ये किचड़ा लेना चाहिए। समझदार व्यक्ति है तो अपने को परिवर्तन करता है, युक्ति रचता है, तोड़ता भी नहीं, समझ के हम परिवार है, तोड़ना भी नहीं, समय देखना। बाबा ने कहा युक्ति शब्द यूज किया आज, तदबीर बनाने की युक्ति बताता है, बच्चे कैसे अपना भाग्य बनाओ, कैसे सेवा करो, कैसे करो, अलग अलग तरीका बताता है, उसको युक्ति कहा। परिस्थिति ऐसे होते हुए भी, ऐसा होते हुए भी आप युक्ति से मुक्ति है, तो वो बाबा देता है युक्ति, समय पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो भाग्य कैसे बनाना चाहिए, तो कैसे तन कितना समय, मन धन कहां लग रहा है, तो कहेंगे एक गरीब एक श्रीमंत क्यों, एक देखो बहुत सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है, क्यों, किसने बनाया? एक के पास इतना धन है खाने वाले कोई नहीं है, किसने किया ये? तब का संग पर जब बाप आता है, भाग्य विधाता आता है, विधि बताता है, उस विधि के अनुसार अब भी संगम पर जो करते हो वो 5000 साल के लिए फिक्स होता है। तब कहते ब्रह्मा जब भाग्य बांट रहा था आप कहां थे? थोड़ी सी नींद आ गई थी, वो आगे चला गया है ना, योग में बैठे थे, बाबा दे रहा शक्ति देता है, थोड़ी सी नींद आ गई तो मिली नहीं, देने वाला दे रहा है तो लेने वाले को जागृत चाहिए। तो बहुत दफा बाबा ने देखो 69-70 की मुरली पढ़ो, बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आया हूं, जब मैं नहीं था तब बुलाते थे मुझको, अब मैं आया हूं, आंखें खोलो मैं आपके सामने खड़ा हूं। कौन सी आंखें? ये नहीं, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्मा के सामने बाबा है, उसको डिस्टेंस नहीं है। शरीर के भान में रहते हो तब लगता है बहुत दूर है, एक निराकार और एक साकार दोनों समान हो, स्वरूप में हो। तो और कुछ नहीं करना, सिर्फ आत्मिक चिंतन में करो, क्योंकि 2400 घंटा हमको शरीर शरीर का चिंतन ही चलता है। आप देख लो विचार मन में क्या चलता है, ज्ञान सुनते सवेरे सुना साक्षी होके देखो, एक घंटा भी ज्ञान का चिंतन अपने आप नहीं आएगा, इतनी आदत बनी हुई है। तो इस आदत को परिवर्तन करने का समय सिर्फ अब भी संगम है, और उसकी विधि हमने अपने जीवन में देखा, आपके साथ हम भी हूं, हमें भी याद नहीं आएगा, लेकिन हम देखते हैं, एक शब्द नोट करके रखते हैं, बार बार सवेरे दिन में शाम को बार बार पढ़ाओ, क्योंकि बार बार व्यर्थ विकल्प चलते हैं, उसको मिटाने के लिए उस जगह पर बार बार ये फीड करना पड़ेगा। जिसकी शक्ति ज्यादा है वो अपने आप जागृत नहीं होगा, सदा नहीं, थोड़े दिन अभ्यास करना, आदत डालनी पड़ती है। एक बार आदत बन गया, हमारी हमारा जीवन आदत से चलता है, हैबिट से चलता है। तो बुद्धि के अंदर आदत डालनी चाहिए, नहीं तो बुद्धि खाली है तो पुरानी बातें स्मृति में आता रहेगा, वो नहीं आना चाहिए तो यहां से भरना पड़ेगा। तो उसके लिए पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब अपने आप नहीं, सिर्फ सुनेंगे तो बनेंगे नवाब नहीं, पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी और आगे करेंगे भी, कर्मों भी मिलाना पड़ेगा तब बनेंगे नवाब। ठीक है, तो आप कौन बनने वाले हो? पक्का नवाब बनने वाले हो? ठीक है, गुड। अभी बाबा को याद करूं।